ज़ायनिज्म जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय औपनिवेशिक तर्क से जन्मा एक प्रोजेक्ट जो जातीय राष्ट्रवाद में बपतिस्मा लिया गया और धार्मिक मुक्ति के आवरण में बाजार में उतारा गया, आज आधुनिक विश्व में दुख के सबसे बड़े इंजनों में से एक बन गया है। त्रासदी केवल यह नहीं है कि इसराइल फलस्तीनियों के साथ क्या करता है, बल्कि यह है कि तथाकथित सभ्य विश्व अपने कानूनों, भाषा और नैतिकता को कैसे तोड़ मरोड़ कर इसका बहाना बनाता है। केवल फलस्तीन ही घेरे में नहीं है, यह सत्य है, यह न्याय है, यह स्वयं मानवता है। मसीहाई उन्माद, नेतन्याहू का विनाशकारी युद्ध। जब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के बाद बाइबल की बयानबाजी का आह्वान किया, अमालिक के विनाश की मांग की और अभियान को प्रकाश के पुत्रों और अंधेरे के पुत्रों के बीच युद्ध के रूप में चित्रित किया, तो वह केवल एक सैन्य अभियान का संकेत नहीं दे रहे थे, वह एक नरसंहार क्रूसेड की घोषणा कर रहे थे। यह मसीहाई राष्ट्रवाद था जो दैवीय अधिकार में लिपटा हुआ था। यहूदी शास्त्रों में अमालेक एक ऐसे शत्रु को संदर्भित करता है जिसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह कोई संयोग नहीं था, यह ज़ायनिज्म का असली चेहरा था, अति राष्ट्रवाद और सर्वनाशकारी सैन्यवाद का एक विषैला मिश्रण, एक उपनिवेशवादी निवासी आंदोलन जो धार्मिक श्रेष्ठता के आवरण में छिपा हुआ है, और यह एक राष्ट्र की आत्मा को और विश्व की अंतरात्मा को निगल रहा है। अब जाओ और अमालेक पर हमला करो और उनके पास जो कुछ भी है उसे पूरी तरह नष्ट कर दो। उन्हें बख्शना नहीं, बल्कि पुरुष और महिला, बच्चे और शिशु, बैल और भेड़, ऊंट और गधे को मार डालो। 1 शमूएल 15:3। ज़ायनिज्म यहूदी धर्म नहीं है। इसराइल दावा करता है कि वह यहूदी राष्ट्र है, लेकिन यहूदी धर्म ज़ायनिज्म नहीं है। यहूदी धर्म इसराइली राज्य से हजारों साल पुराना है। यह एक ऐसा विश्वास है जो न्याय, स्मृति और नैतिक कानून में निहित है। कोई भी इस्लामी राष्ट्र यह दावा नहीं करता कि वह सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक कि वेटिकन भी यह दावा नहीं करता कि वह सभी ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसराइल दावा करता है कि वह सभी यहूदियों की ओर से बोलता है। इस दावे का उपयोग असहमति को चुप करने, आलोचना को अपराधी बनाने और जवाबदेही से बचने के लिए करता है। ज़ायनिज्म 19वीं सदी का एक राजनीतिक आंदोलन है जो यूरोपीय नस्लीय तर्क और औपनिवेशिक अधिकार में निहित है। 1897 में जन्मा, इसने 1933 में हवारा समझौते के तहत नाजियों के साथ सहयोग किया ताकि यहूदियों को फलस्तीन स्थानांतरित किया जा सके, जबकि जर्मनी के खिलाफ यहूदी नेतृत्व वाले फासीवाद विरोधी बहिष्कार को कमजोर किया। इसने ऐसी रणनीतियों का उपयोग किया जिन्हें आज आतंकवाद कहा जाएगा, बम विस्फोट, हत्याएं और जातीय सफाई, ताकि ब्रिटिश जनादेश और स्वदेशी फलस्तीनी आबादी को बाहर निकाला जा सके। 1948 में इसराइल ने खुद को एक राज्य घोषित किया, नकबा में 7 लाख से अधिक फलस्तीनियों को निष्कासित किया, उनके गांवों को मिटा दिया और कथानक को फिर से लिखा। तब से इसराइल एक रंगभेदी शासन के रूप में कार्य करता रहा है, भूमि को हड़पना, घरों को ध्वस्त करना, बच्चों को गिरफ्तार करना और एक सैन्य कब्जा लागू करना जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन करता है। संविदा को तोड़ना, और यह केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात नहीं है, ज़ायनिज्म यहूदी कानून हलाखा का भी उल्लंघन करता है, जिसमें युद्ध के लिए सख्त नियम शामिल हैं। नागरिकों को बख्शा जाना चाहिए, हमले से पहले शहरों को शांति की पेशकश की जानी चाहिए, फल देने वाले पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, भुखमरी, अंधाधुंध हत्या और अनावश्यक क्रूरता निषिद्ध है। ये कानून वैकल्पिक नहीं है, ये तो राह है, और इसराइल ने हर एक को व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया है। इसने जानबूझकर स्कूलों, अस्पतालों, बेकरियों और आश्रयों पर बमबारी की है। इसने भुखमरी को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने सहायता को रोका, जल बुनियादी ढांचे को नष्ट किया और 20 लाख से अधिक लोगों की बिजली काट दी। इसने बागों को उजाड़ दिया, घरों को ध्वस्त किया और पूरे मोहल्लों को जातीय रूप से साफ किया। यह रक्षा नहीं है, यह अपवित्रता है। यहूदी कानून, यहूदी नैतिकता और ईश्वर के साथ यहूदी संविदा का विश्वासघात। पिकुआच नेफेश और बतसेलिम एलोहिम। पारंपरिक यहूदी धर्म मानव जीवन को पवित्र मानता है। पिकुआच नेफेश का सिद्धांत एक जीवन बचाने की बाध्यता लगभग हर अन्य आज्ञा को ओवरराइड करता है। जीवन का मूल्य अनंत है। एक भी निर्दोष जीवन लेना ईश्वर के नाम को अपवित्र करना है। इसके अलावा यहूदी धर्म सिखाता है कि सभी मनुष्य बतसेलिम एलोहिम में बनाए गए हैं, ईश्वर की छवि में, उत्पत्ति 1:27। इसमें फलस्तीनी भी शामिल हैं। गाजा में प्रत्येक बच्चा दैवीय छाप रखता है। प्रत्येक मलबे में दबी महिला, प्रत्येक ड्रोन द्वारा मारा गया पिता, प्रत्येक घेराबंदी से भूखा परिवार अपने भीतर ईश्वर की अपनी छवि की चिंगारी रखता है। उनकी मानवता को नकारना ईश्वर को नकारना है। उनके हत्यारे को ईश्वर के नाम पर मारना चिलुल हाशिम है, दैवीय का अपवित्र करना। दाऊद बनाम गोलियत। इसराइल खुद को एक शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में एकमात्र लोकतंत्र के रूप में चित्रित करना पसंद करता है। वास्तव में इसके पास मध्य पूर्व की सबसे उन्नत सेना है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका बिना शर्त समर्थन देता है और जो सैमसन विकल्प के रूप में जानी जाने वाली सिद्धांत के तहत परमाणु हथियारों से लैस है। फिर भी यह बच्चों द्वारा फेंके गए पत्थरों का जवाब गोलियों से देता है। यह हमास के घरेलू रॉकेटों, जो लगभग सभी को इसके आयरन डोम द्वारा रोक लिया जाता है, का जवाब 2000 पाउंड के बमों से देता है। यह पूरे क्षेत्र में यमन, सीरिया, लेबनन, ईरान निवारक हमले करता है और जब जवाबी हमला होता है तो आतंकवाद का रोना रोता है। इसने यहूदी आघात को सामूहिक हत्या को सही ठहराने के लिए हथियार बनाया है। लेकिन दुनिया बदल रही है, आंखें खुल रही हैं। क्रूरता को अब पवित्र भाषा या पिछले दुखों की अपीलों से छिपाया नहीं जा सकता। खून बहुत दिखाई देता है, शव बहुत अधिक हैं। संयुक्त राज्य की सहभागिता। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसराइल का मुख्य समर्थक, लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल की आलोचना करने वाले लगभग हर प्रस्ताव को वीटो करता रहा है, लेकिन यह उससे भी आगे गया है। 2024-2025 में संयुक्त राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान और कई आईसीसी न्यायाधीशों पर तब प्रतिबंध लगाए जब उन्होंने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। संयुक्त राज्य ने कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसिस्का अल्बानीस को भी निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने सच बोलने की हिम्मत की। इस बीच नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का विषय स्वतंत्र रूप से यात्रा करता है और पश्चिमी नेताओं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, द्वारा व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाता है। पश्चिमी मीडिया और सबसे नैतिक सेना। वे इजरायली सेना को दुनिया की सबसे नैतिक सेना कहते हैं। एक वाक्यांश जो शास्त्र की तरह दोहराया जाता है, जबकि यह अमेरिका में निर्मित बमों को शरणार्थी शिविरों पर गिराता है, भोजन की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों का नरसंहार करता है और पत्रकारों, डॉक्टरों और बच्चों को निशाना बनाता है। पश्चिमी मीडिया, जो सत्य का कथित संरक्षक है, सहभागिता में शामिल हो गया है। यह वेस्ट बैंक में बसने वालों की भीड़ को झड़प के रूप में वर्णित करता है। यह मारे गए फलस्तीनी बच्चों के नाम दफन करता है, जबकि हर इजरायली दावे को बढ़ाता है, चाहे वे कितना भी निराधार हो। यह यहूदी विरोधी होने के आरोपों को असहमति को चुप करने के लिए हथियार के रूप में मानता है। इजरायली सैनिक उन घरों में नाचते हुए वीडियो पोस्ट करते हैं जो फलस्तीनी घरों से लूटे गए हैं, मृतकों का मजाक उड़ाते हैं, विस्थापन का उत्सव मनाते हैं। यह छिपा नहीं है, यह इनकार नहीं किया जाता, यह प्रदर्शित किया जाता है। नाजी अपराधों का एक भयानक उल्टफेर, जहां नाजी चुपके से मारते थे, साइनवादी सबके सामने मारते हैं, दुनिया का मजाक उड़ाते हुए उसे रोकने की चुनौती देते हैं। मानव अंतरात्मा के खिलाफ युद्ध। गाजा में जो हो रहा है वह केवल फलस्तीनी लोगों के खिलाफ अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक को $100,000 की बमों को F-16 से $20 के तंबुओं में रहने वाले परिवारों पर गिराते हुए देखना युद्ध नहीं है, यह मानव अंतरात्मा पर हमला है। शिशुओं के जले हुए शवों को आत्मरक्षा के नाम पर उचित ठहराया जाना नैतिकता की अवधारणा का अपमान है। इसराइल गाजा के इंटरनेट को काट सकता था, जैसा कि उसने बिजली, पानी और सहायता के साथ किया, लेकिन वह इंटरनेट को चालू रखता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि दुनिया देखे। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है, यह एक धमकी है, देखो हम क्या कर सकते हैं, और जान लो कि कोई कानून, कोई अदालत, कोई सिद्धांत हमें नहीं रोकेगा। यह केवल गाजा के खिलाफ युद्ध नहीं है, यह करुणा के खिलाफ युद्ध है, सत्य के खिलाफ युद्ध, तुम्हारी आत्मा के खिलाफ युद्ध। संविदा तोड़ने की कीमत। संविदा हत्या करने का लाइसेंस नहीं है, यह न्याय, दया और विनम्रता की मांग करता है और तुराह चेतावनी देता है। जब इसराइल अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है तो ईश्वर अपनी कृपा वापस ले लेता है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींच लूंगा। लेव्यवस्था 26:33 साइनस ने इस संविदा को तोड़ दिया है। इसने भूमि और शक्ति को मूर्ति बना दिया है। इसने विधवा, अनाथ और अजनबी को छोड़ दिया है। इसने वादा की गई भूमि को कब्रिस्तान में बदल दिया है। हिसाब किताब अपरिहार्य है, कानूनी, ऐतिहासिक और धार्मिक। न्याय का ईश्वर भास का पात्र नहीं है, संविदा हथियार नहीं है, और प्रत्येक बच्चे का खून धरती से पुकारता है, कैन को दी गई चेतावनी को दोहराता है। तूने क्या किया? तेरे भाई का खून धरती से मेरी ओर पुकार रहा है। उत्पत्ति 4:10 निष्कर्ष। आज गाजा में किए जा रहे अपराध केवल एक लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत के खिलाफ हैं। यह सिद्धांत कि सभी मानव जीवन मूल्यवान हैं। जब दुनिया गाजा को जलते हुए देखती है, तो केवल फलस्तीनी जीवन ही नष्ट नहीं हो रहे हैं, यह न्याय, कानून और मानव गरिमा का अर्थ है। ज़ायनिस्म ने दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। इसने युद्ध को शांति, उपनिवेशीकरण को आत्मरक्षा, नरसंहार को नैतिकता बना दिया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भ्रष्ट कर दिया है, सत्यवक्ताओं को चुप कर दिया है और एक प्राचीन धर्म को एक राष्ट्रवादी विजय एजेंडे की सेवा के लिए अपहरण कर लिया है। लेकिन यह अंत नहीं है, इतिहास समाप्त नहीं हुआ है, और यह उन लोगों के प्रति उदार नहीं होगा जिन्होंने नैतिकता के ऊपर शक्ति को चुना। कोई साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता, और उन लोगों के लिए न्याय होगा जिन्होंने लाभ को धार्मिकता और क्रूरता को करुणा से ऊपर रखा। एक ऐसी दुनिया में जहां अन्याय कानून बन जाता है, प्रतिरोध अपराध नहीं है, यह एक कर्तव्य है।